नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 56 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल पत्र 1500 से अधिक नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। कोलकाता की सीआईएल दल अदालत आरजी कर अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। गाजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते के पहले चरण में कल से 735 फिलिस्तीनी कैदियों और 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। और बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी आज शाम इंडियन ओपन के सेमीफाइनल में मलेशिया की गो जे फेई और नूर इजुद्दीन के साथ सामना करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा है कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्षों में 2,25,00,000 से अधिक संपत्ति के दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा है कि संपत्ति के उचित दस्तावेज न होना एक बहुत बड़ी समस्या है और इस कारण ही विवाद पैदा होते हैं। उन्होंने कहा है कि संपत्ति के उचित प्रलेखन से बैंकों के ऋण मिल पाएगा और अवैध अतिक्रमण से संरक्षण मिलेगा। श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 7 से 8 वर्षों में देश में 98% जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि संपत्ति के अधिकार उपलब्ध होने से ग्राम पंचायतों की समस्याओं का समाधान होगा और कहा कि संपत्ति के वैध दस्तावेज होने से आपदा के मामले में उचित दावा भी मिल पाएगा। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति स्वामियों की स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है। सर्वेक्षण के लिए अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवारों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। यह योजना संपत्ति के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करती है और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम बनाने के साथ ही संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करती है। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से जुड़े धन शोधन मामले में 300 करोड़ रुपए से 142 अंचल संपत्तियां जब्त की है। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य कई व्यक्तियों पर कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। निदेशालय ने कहा है कि मामले में ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने MUDA द्वारा अधिग्रहित 3 करोड़ से अधिक भूमि के बदले अपनी पत्नी के नाम पर पोश इलाके में 14 स्थानों पर जमीन के रूप में मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। निदेशालय ने यह भी दावा किया है कि इन 14 स्थानों के अलावा MUDA के रियल स्टेट व्यवसायियों को मुआवजे के रूप में बड़े पैमाने पर जमीन अवैध रूप से आवंटित की। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने इस घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। संयुक्त सदस्यीय समिति ने बिहार में वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में पटना में वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में समिति के अध्यक्ष जगदिम्बका पाल ने बताया है कि समिति वक्फ संपत्तियों, उनके प्रबंधन और विभिन्न अन्य मुद्दों के बारे में बिहार के विभिन्न हितधारकों से चर्चा करेगी। श्री जगदिम्बका पाल ने बताया है कि समिति संसद के आगामी बजट सत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 17 सदस्यों की विधानसभा के लिए कुल 1521 नामांकन पत्र भरे गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन भरने के अंतिम दिन कल 680 नामांकन पत्र भरे गए हैं। नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक 29 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सियालदाह की अदालत आज फैसला सुनाएगी। जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने इस मामले में संजय रॉय के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। दूसरी ओर पीड़िता के माता पिता, जूनियर डॉक्टरों और समाज के विभिन्न वर्गों ने इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया है कि सीबीआई इस मामले में किसी और व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई है। भारत और अमेरिका ने साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और आपराधिक जांच में डिजिटल फॉरेंसिक मामले पुनः सुने डिजिटल फॉरेंसिक मामले में सहयोग और सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के उप सचिव क्रिस्टी कैनेगेलो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में चाकू से हमला करने के मामले में एक व्यक्ति से पूछताछ की है। वासीर अली सलमानी नाम का ये व्यक्ति बढ़ई का काम करता है और उसका हुलिया हमलावर से मिलता जुलता है। इमारत से भागते समय हमलावर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सैफ अली खान को हमले के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ऑपरेशन हुआ और अब वे खतरे से बाहर है। उधर महाराष्ट्र के गृह राजस्व ग्रामीण विकास मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि घटना के पीछे लूटपाट ही एकमात्र मकसद था और हमले में कोई अंडरवर्ल्ड गिरोह शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। गाजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ हुए समझौते के पहले चरण में इसराइल 735 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल के न्याय मंत्रालय के अनुसार तीन चरणों वाला ये समझौता कल से लागू होगा। पहले चरण के 42 दिन तक चलने की संभावना है। इस दौरान इसराइल के 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। मंत्रालय ने रिहा किए जाने वाले सभी कैदियों के नाम जारी कर दिए हैं, लेकिन 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों के नाम नहीं बताए गए हैं। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में सोमवार रात 9:30 बजे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा के लिए एक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद और परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आमंत्रित विशेषज्ञ से कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा और हितधारकों, नागरिकों और सरकार का सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके योगदान से जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सवाल टेलीफोन नंबर 0112342105 और 0112331444 पर पूछे जा सकते हैं। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज शाम नई दिल्ली में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के गो जेफे और नूर इजुद्दीन से होगा। मैच केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 56 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। 17 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल 1500 से अधिक नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है। कोलकाता की सियालदह अदालत आरजीकर अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। गजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते के पहले चरण में कल से 735 फिलिस्तीनी कैदियों और 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। और बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी आज शाम इंडियन ओपन के सेमीफाइनल में मलेशिया जोड़ी गो जेफे और नूर इजुद्दीन का सामना करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।